ओम शांति। ये ब्राह्मण जीवन बहुत बहुत अनमोल है, मोस्ट वैल्यूबल है। इस ब्राह्मण जीवन की महिमा स्वयं भगवान गाते हैं कि देवताओं से भी उत्तम जीवन ब्राह्मण जीवन है, ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। इसलिए कहते देवताएं भी भोग के लिए तरसते हैं और ब्राह्मणों को ब्रह्मा भोजन मिलता है। जैसे अच्छा भोजन खाने से हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है, अच्छा ताकतवर रहता है, उसी तरह से स्वयं के मन को शक्तिशाली बनाने के लिए भी स्वयं हमें भगवान मुरली के रूप में भोजन रोज हमें देते हैं, शुद्ध विचारों का भोजन, शुद्ध संकल्पों का भोजन, जो कि हमारे मन को समर्थ शक्तिशाली बना देता है। तो आज हम देखेंगे, मुरली रिवाइज करेंगे, 29 मार्च 86 की मुरली है। बाबा डब्ल्यू विदेश से मुलाकात कर रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर विधि बताई है व्यर्थ से मुक्त होने की। पहले हम उसको देखेंगे कि कैसे हम व्यर्थ से मुक्त हो सकते हैं। बाबा ने बहुत सुंदर तरीका बताया। यूं कहें, जितना भी हम क्लासेस सुनते हैं, वरिष्ठ भाई बहनों के अनुभव सुनते हैं या उनके जीवन के चरित्रों को देखते हैं, उनके जीवन में कैसे बदलाव हुआ, कैसे परिवर्तन आया, कैसे उनकी सोच बदली, वृत्ति बदली, दृष्टि बदली, उनकी मानसिकता कैसे बेहद हो गई, तो उसमें हम सार में ही देखेंगे कि उन वरिष्ठ भाई बहनों ने या दादियों ने मुरली के ऊपर बहुत अटेंशन दिया। मुरली एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मानसिक धरातल को बहुत नरम बना देती है, जिस धरातल पर ईश्वरीय प्रेम के बीज अंकुरित होने लगते हैं। इसलिए बाबा ने इस मुरली में बहुत अच्छा सुंदर जिक्र किया। बाबा कहते ज़्यादा सोचो नहीं, क्योंकि ज़्यादा सोचने की बीमारी हमने अनेक जन्मों से पाल रखी है। उस बीमारी से ही जैसे हमको प्यार हो गया है, व्यर्थ बोलने या व्यर्थ सोचने बगैर रह नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं कि व्यर्थ सोच जो है वो मन को कमज़ोर कर देता है। जिसके ज़्यादा व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो बाबा ने छूटने की विधि बताई है, 2-4 बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ। इसलिए दादी जानकी जी स्वयं बताती थी, या दादी जानकी जी के बारे में अन्य दादियां भी बताती थी कि कैसे मुरली से प्रीत, कितनी बार मुरली वो पढ़ते थे, 12 बार मुरली पढ़ते थे। तो बताइए, सारे दिन में अगर 12 बार मुरली पढ़ी जाए तो वो मन कितना शक्तिशाली हो जाएगा, बुद्धि कितनी एकाग्र हो जाएगी, उसमें कितनी रूहानियत बन जाएगी, उसमें कितनी परमात्म शक्तियां भर जाएंगी। तो हमें मुरली को हल्के से नहीं लेना है। हम स्वयं देखते हैं, जब जब हमने मुरली को बहुत गहराई से पढ़ा है, उसको बार बार पढ़ा है, उसके नए नए अर्थ हमारे हाथ में लगते हैं। इसलिए मुरली को हमें हल्के से नहीं लेना है। बाबा कहते हैं कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी, जितनी बार हम मुरली पढ़ेंगे तो कोई ऐसे पॉइंट का गुह्य अर्थ हमारे हाथ में लगेगा जो हमारी सब समस्याओं का समाधान कर देगा, जो हमारे मन को शक्तिशाली बना देगा, जो हमें महसूस होगा कि सचमुच पुरुषार्थ तो बहुत सहज है ये, जो एक मन को एक नई दिशा देगा, पुरुषार्थ करने के लिए उमंग उत्साह भर देगा, एक अंदर में खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी, अतीन्द्रिय सुख का खजाना, जो बाबा ने कल ही कहा था स्लोगन में कि अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक हैं तो जो खजाना है अतीन्द्रिय सुख का वो खो नहीं सकता है। तो शुद्ध संकल्पों की शक्ति बाबा कहते जमा होती जाएगी। तो व्यर्थ से मुक्त होने की बहुत सुंदर विधि बताई है जो हमें अप्लाई करने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि इसी मुरली में बाबा ने एक जगह जिक्र किया है कि कई बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं, चाहे स्वयं के संस्कारों के कारण, संगठन के कारण या खराब वायुमंडल के कारण दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते वो भी दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि परिस्थितियाँ नए नए रूप में अनेक प्रकार की आएंगी, वो हमें हमारे ही संस्कारों के रूप में हमारे सामने आ सकती हैं। तो अगर हम इतना शक्तिशाली स्वयं को बना लें, ईश्वरी महावाक्य से मन बुद्धि को भरपूर कर लें, चार्ज कर लें, शक्तिशाली बना दें, तो हमारे जो स्वयं के पुराने पिछले जो खराब संस्कार है, अगर वो कहीं भी हमारे सामने किसी न किसी रूप से आते भी हैं, तो वो एक आएंगे और परछाई की तरह चले जाएंगे, वो हमारे पास ठहरेंगे नहीं। जैसे एक हवा का झोंका हल्का सा आता है और चला जाता है, रुकता नहीं है, उसी तरह वो संस्कार भले हमें स्मृति में हल्के से आएंगे लेकिन चले जाएंगे वो तुरंत। तो ये हमें बहुत अटेंशन रखनी है कि हमें मुरली जो है वो बार बार पढ़नी है, ताकि हम व्यर्थ को संपूर्ण रूप से त्याग दें, क्योंकि जो ईश्वरीय अनुभूति है, ईश्वरीय प्रेम का जो बीज है, वो त्याग, तपस्या और वैराग्य की भूमि पर ही अंकुरित होते हैं। जब तक हमने व्यर्थ का त्याग नहीं किया है, अच्छे से तपस्या नहीं, तपस्या की लगन की अग्नि प्रज्वलित नहीं की है, वैराग्य हमारा जागा नहीं है, तो उस भूमि पर व्यर्थ के बीज व्यर्थ का जंगल ही खड़ा कर देंगे। इसलिए हमें उन चीज़ों का तुरंत त्याग कर देना है जो व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं, जिन जो सारहीन हैं, जो हमारे जीवन के पुरुषार्थ को कहीं ना कहीं रोक देती हैं। तो आज हमें उनका दृढ़ संकल्प करना है। इसलिए बाबा ने एक बच्चों के रिजल्ट में देखा इसी मुरली में कि कई बच्चों ने अच्छी प्रगति की है दृढ़ संकल्प से, बच्चों के खेल भी देखे। तो हम देखेंगे इस मुरली में बहुत सारी बातें बाबा ने कही हैं। एक तो ये मुरली वाला महावाक्य हमको याद ना रख के बल्कि उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आज बाबा डब्ल्यू विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं, तो बाबा ने विशेषताएं, दो विशेषताएं देखी डब्ल्यू विदेशी बच्चों में। बाबा कहते श्रेष्ठ भाग्यवान बन गए हो, विशेष आत्माएं बन गए, क्योंकि बाप के बन गए हैं, ईश्वरीय परिवार के बन गए, स्नेह के संबंध में आ गए। स्नेह के संबंध में आने से ईश्वरीय परिवार के बन गए, बाप के बन गए, अच्छा सहयोग किया। स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध जाते हैं, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति भी वैसी है कि एक दो में आकर्षित भी जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे स्नेह के बंधन में बंध गए, और उस स्नेह के बंधन में बंधने से दूसरी विशेषता जो है वो परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में आ गई। ना केवल स्वयं का परिवर्तन किया बल्कि दूसरों को भी, जो हमजिन्स हैं उनको भी परिवर्तन करने में मदद की, उनकी लगन भी पैदा की। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, ये दो विशेषताएं विदेशी बच्चों में देखी, वो हिम्मत से उन्होंने धारणा की। तो बाबा कहते प्रैक्टिकल प्रमाण दिखा रहे हैं, सबूत है कि एक पाश्चात्य संस्कृति जो उस संस्कृति में लिप्त हों और उस संस्कृति से निकलकर एक भारतीय संस्कृति में बंधना, ईश्वरीय संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति में बंधना, बहुत बड़ी एक ये चैलेंज होती है उनके लिए। तो ये बाबा उन बच्चों की महिमा कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। तो दो विशेषताएं देखी और उन विशेषताओं के आधार पर अपने जीवन को परिवर्तन किया। फिर बाबा बच्चों से रूरोहन कर रहे हैं विशेषताओं की, जो बच्चों की विशेषताएं हैं आपस में बाप दादा बतन में रूरोहन करते करते कहते हैं कि जो सीज़न चल रहा है 29 मार्च 86 की मुरली है, तो लास्ट सीज़न चल रहा है, तो बाबा कितने सीज़न तो यहाँ समाप्त हो रहा है। तो सीज़न हद का है, ये बेहद में वतन में आओ तो वहाँ कोई प्रकार की हद नहीं है। अव्यक्त मिलन का सीज़न तो सदा ही चालू है, ये तो हद का सीज़न, हद का समय देखना पड़ता है। लेकिन अव्यक्त वतन में कभी भी आ सकते हो, किसी भी समय आ सकते हो, अंत में तो अव्यक्त मिलन ही ये हमारा रह जाएगा, जो बाबा ने पहले से ही जिक्र किया है कि 69 की 70 मूल्यों में की मूल्यों में भी है। कई बार पहले भी जिक्र किया कि अव्यक्त स्थिति वाले बच्चे ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकते हैं, तो आज किस्में के अनुसार हम सब उसी अव्यक्त मिलन को बार बार बढ़ाते जाएंगे, सारे दिन में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करेंगे। अव्यक्त शक्ति जो है वो बहुत शक्तिशाली है, और उसके लिए हमें स्वयं को जितने भी व्यक्त भाव हैं, उन व्यक्त के भाव, चाहे वो देह के संबंध में हैं, देह के पदार्थ हैं, व्यक्ति है, वस्तु है, देह से रिलेटेड कोई भी है, उन सब से हमको ऊपर उठने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना होगा। बार बार अव्यक्त बाबा का हम आह्वान करें, अव्यक्त बाबा दादा का वरदानी हस्त अपने सिर के ऊपर अनुभव करें, वरदानों से स्वयं को शक्तिशाली बनाएं, अव्यक्त बाप दादा से रूहान करें, या फिर हम स्वयं वतन में पहुंच जाएं, अपने फरिश्ते रूप से चमकीली ड्रेस पहनकर बाबा के सामने बैठें। बार बार हम इस व्यक्त की दुनिया से, आवाज़ की दुनिया से, इस शोर शराबे की दुनिया से ऊपर उठकर थोड़ा एकांत का अनुभव करें। इसलिए बाबा ने कुछ दिन पहले संडे के मूल्य में भी कहा था कि शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति के वातावरण में शांत रहना ही बड़ी बात है। तुम इस जो कोलाहल संसार में मचा हुआ है, उस शोर शराबे के बीच भी हम एकांत में चले जाएं, एक के अंत में आने वाले कल की मुरली जो है, अपना साकार मुरली, उसमें बाबा ने एकांत के बारे में जिक्र किया है कि थोड़ा थोड़ा टाइम में निकाल कर एकांत में चले जाओ। तो हम एकांत में जाकर अव्यक्त शक्ति की अनुभूति करें, तो बाबा से मिलें, बाबा के समान बने। बाबा कहते मिलना अर्थात समान बनना। तो बाबा बार बार बच्चों को वतन में इमर्ज करते हैं। बाबा कहते वहाँ तो कोई साधनों की जरूरत नहीं, यहाँ हद में तो फिर भी देखना पड़ता है, समय देखना पड़ता है, साधनों की जरूरत पड़ती है, फिर यहाँ संगठन को देखना पड़ता है। वहाँ तो बाबा कहते कितने भी लाख आ जाएं, वो भी एक छोटा सा संगठन लगता है, एक सेकंड में बाबा इमर्ज कर लेते हैं। तो हमें स्वयं को बार बार उसी अनुभव में स्थित कर देना है कि बाबा ने मुझे अव्यक्त वतन में इमर्ज किया है, और बाबा मुझे बहुत मीठी दृष्टि दे रहे हैं, बाबा मेरे सिर के ऊपर वरदानी हाथ रखे मुझे चार्ज कर रहे हैं, मुझे संपूर्ण पवित्र बना रहे हैं, मेरे सारे जो व्यर्थ का अंदर कीचड़ा है उसे जैसे ब्लॉटिंग पेपर की तरह चूस रहे हैं, निकाल रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, और मैं आत्मा संपूर्ण निर्मल पवित्र शुद्ध हो गई हूँ। ये सारे दिन में हमें इस अनुभव को बढ़ाते जाना है। फिर बाबा ने बच्चों का खेल देखा, रिजल्ट देखा, बाबा कहते प्रगति तो अच्छी की है दृढ़ संकल्प के साथ, कई बच्चे मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रहे हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, कई प्रकार के खेल दिखाते हैं, कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी अनुभव के साथ गंभीर भी हैं पुरुषार्थ के लिए। तो बच्चों का रिजल्ट देखा बाबा ने, चलते चलते कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं पिछले वर्ष की अपेक्षा अभी अंतर है, थोड़ा मजबूत हुए हैं। फिर भी बाबा देखिए विशेषताओं का ही वर्णन करते हैं। तो हमें भी स्वयं देखना है, पिछले भले हमारे जो हमारा बीता हुआ कल है, या बीता हुआ परसों है, या 2 साल है, 1 साल है, चाहे हमारे से कोई गलतियां हुई हैं, वो हमें पता भी है, लेकिन हमें उनको पकड़ के नहीं बैठ जाना है, उनको छोड़ देना है, भूल जाना है। क्योंकि अगर हम उनको पकड़ के बैठेंगे तो व्यर्थ का भंडार अंदर में, व्यर्थ का तूफान चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए उन बातों को फुल स्टॉप करके आगे बढ़ना है, अपनी विशेषताओं को देखना है। तो बाबा यहाँ भी विदेशियों की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं कि अनुभवी हुए वीर भी बने हैं पुरुषार्थ के लिए, अनेक प्रकार के रीति रस्म हैं, मान्यताएं हैं, लेकिन उन सबको जानते हुए भी उन्होंने उमंग उत्साह से अपने जीवन को बदला है। पढ़ाई से प्यार है, याद से प्यार है, याद में रहने का उमंग उत्साह है। बाकी भारतवासियों को तो सहज है क्योंकि देवताओं को, शास्त्रों को जानते हैं, अर्थात जो भी भारत की रीति रस्में हैं वो तो भारतवासी जानते हैं। लेकिन विदेशी उस संस्कृति के बीच में रहते हुए भी इस संस्कृति को अपनाना, तो थोड़ा उनको ये अटपटा भी कई बार लगता है, इसलिए कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर भी जैसे बताया पीछे, हम जिसने जगाया है, उन्होंने परिवर्तन लाया है स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति से। कुछ बच्चे हैं जो निश्चय बुद्धि भी हैं, अटल अडोल हैं, और उनको भी निश्चय बुद्धि बना रहे हैं, जैसे उदाहरण मूर्त हैं वो। और कोई बच्चे प्रवृत्ति में भी हैं, लेकिन अपने पावरफुल संकल्पों से दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन कर लिया है। जैसे कल भी बाबा ने कितनी सुंदर टेक्निक बताई थी कि अपने को भाई भाई समझो, बहन समझो, तो ये मेरी मीठी बहन है, तो इससे बाबा कहते जो क्रिमिनल आई है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने भी अपना दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लिया। ऐसे भी बाबा ने विशेष रत्न देखे, विशेष बच्चे देखे, कुछ बच्चे देखे जो आजकल के साधनों में कुछ मस्त हैं, जो अल्पकाल के साधन हैं, अल्पकाल की सुख की अनुभूति कराने वाले हैं। लेकिन बाबा कहते ऐसे बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थ कर अपने जीवन को बदल रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में आ गए हैं, दिन रात अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे भी हैं। बाबा फिर यहाँ एक एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे जाटकू का एग्जाम्पल दिया, अर्थात जाटकू अर्थात एक धक से बलिहार जाने वाले। तो ऐसे भी बच्चे हैं जो एक सेकंड में पुराने संकल्पों को मन से त्याग दिया, फिर उनकी तरफ उनकी आंख नहीं गई, अर्थात हमारे में जो भी कमजोरी है हम स्वयं चेक करें और आज से दृढ़ संकल्प का एक प्रतिज्ञा ले लें और वो प्रतिज्ञा हमारी कायम रहे। और वो शायद छोटी छोटी बातें होंगी व्यर्थ की जिनके प्रति हमको लगाव है, या जिनसे हम बार बार हमारी जहाँ आँख जाती है उसको आज हम छोड़ दें। तो आज ये दृढ़ प्रतिज्ञा करते हुए हम भी स्वयं को बदल दें। तो ऐसे बाबा बच्चों के रिजल्ट देखकर खुश हो रहे थे। फिर बाबा ने बच्चों की दो प्रकार की जो रचना है, ब्रह्मा की रचना कहा जाता है, ब्राह्मण एक मुख वंशावली और एक दूसरा है संकल्पों की वंशावली है। तो ऐसी सृष्टि देखी बाबा ने, संसार में कहा था ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो यहाँ भी बाबा ने दो प्रकार की सृष्टि रची है, एक तो है मुख वंशावली और दूसरे अव्यक्त होने के बाद जितने भी ब्राह्मण पैदा हुए हैं उनको हम संकल्पों की वंशावली कहेंगे। ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि का निर्माण किया। तो संकल्प की रचना बाबा कहते कम नहीं है, बहुत शक्तिशाली होती है। दूर से ही अनेक प्रकार के दीवारें हैं, पर्दे हैं जिनके अंदर वो हैं, उन सबको अपने संकल्पों से शक्तिशाली बना दिया। और ये कईयों का अनुभव भी है। हमारे जगदीश भाई जी सुनाते थे, कहीं विदेश में गए थे, लंदन में एक बार ब्रह्मा का भी अनुभव सुनाया, इधर जाओ, कहीं वो रास्ता चलते चलते भूल गए थे तो बार बार जैसे उनको प्रेरणा आ रही थी, अंदर में आ रहा था इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। और वैसे भी हम इतिहास में सुनते हैं कि जब इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के आरंभिक काल के इतिहास को सुनते हैं, कई उस समय के बंदेलियाँ या कई बच्चे बाबा के बाबा टच कराते थे उनको, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। अभी भी कईयों को ऐसा अनुभव होता है सेवा केंद्र की तरफ उनके पांव बढ़ने लगते हैं, आकर्षण होती है। कईयों को कास्केट दिखता है तो उसकी आकर्षण होने लगती है, कईयों को ब्रह्मा का चित्र दिखता है जैसे वो उससे अनुभव करते हैं, जैसे चैतन्यता का अनुभव करते हैं। तो संकल्पों की रचना बाबा कहते बहुत शक्तिशाली है। तो बाबा ऐसी रचना को देख के खुश हो रहे थे। तो बाबा कहते अभी आपको भी ऐसे ही शक्तिशाली बनना है क्योंकि समय कम है, अभी बचपन का समय खत्म हो गया, अभी बाबा कहते अनुभवी बनो और औरों को भी अनुभवी बनाओ। अभी अचल अडोल बनकर दूसरों को भी अनुभवी बनाने का समय है, अभी खेल करने का समय खत्म हो गया है, अभी स्वयं को समर्थ शक्तिशाली बनाने का टाइम है। बाबा कहते अगर स्वयं ही निर्बलता के संस्कार होंगे तो आने वाली आत्माओं को भी वैसे संस्कार उनके भी वैसे संस्कार बनेंगे। तो स्वयं को शक्तिशाली बनाना है और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाना है। और शक्तिशाली बनने की विधि तो बाबा ने बताई है, मुरली पढ़ो बार बार। अर्थात हमारे जो मन के संकल्प हैं वो इतने शक्तिशाली हो जाएं, इतने शक्तिशाली हो जाएं कि व्यर्थ के आने की मार्जिन ही ना रहे। तो बाबा कहते बहुत रचना आने वाली है, इतनी संख्या में खुश नहीं होना, आगे बहुत भी आएगी, बहुत संख्या आएगी, लेकिन वो संख्या पीछे आने वालों में अंतर होगा। जैसे यहाँ भी एग्जांपल दिए बाबा ने, जो गोल्डन जुबली वाले और सिल्वर जुबली वाले, अर्थात 86 में संस्था की गोल्डन जुबली थी और फिर सिल्वर जुबली वाले भी बैठे होंगे, तो दोनों में अंतर तो बताया ना बाबा ने कि दोनों की पालना का अंतर है। तो थोड़े समय में स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, समय कम है और कार्य ज़्यादा है, इसलिए बाबा कहते अपने समन संपर्क से भी सहयोग दो, जिससे क्या हो कि उन्हों को सहज लगे आगे बढ़ने का। ऐसा ना हो कि हमारा जीवन भी बड़ा कठिन दिखे, बड़ा मुश्किल दिखे, बड़ा चिंता भरा मुखड़ा दिखे, एकदम त्यागी त्याग दिखे जीवन में, नहीं, भाग्य हमारे चेहरे से झलकता रहना चाहिए ताकि हमारे चेहरे की झलक भी उनको हमारे चाल चलन की, हमारे बोल की, व्यवहारिकता की झलक उनको परमात्म प्यार के प्रति आकर्षित करे कि जीवन बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, सहज है। तो ऐसा हमको पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते अब अपने लिए शक्तियाँ जमा करने का समय चला गया, अब अपने प्रति साथ साथ दूसरों को शक्तिशाली बनाने का टाइम है। 2 साल वाले भी कम नहीं है बाबा कहते, अगर कोई 6 महीने वाला भी है 2 साल वाले, एक दिन तो बाबा ने डायमंड हॉल में मुरली में भी कहा था 1 सप्ताह वाला भी बच्चा भी कम नहीं है, वो भी सेवा कर सकता है। तो बाबा कहते लास्ट में आए हैं, लेकिन सब स्टेज से पास होना है, अर्थात सारी शक्तियों का अनुभव करना है। एग्जाम्पल दिया बाबा ने कहा कि जैसे वृक्ष में दिखाते हैं ना चित्र में, कि सब स्टेज से पार होना है, चाहे 10-12 जन्म हो, लेकिन उन 10-12 जन्म में भी सारी स्टेजेस सतो रजो तमो सब स्टेज पार करनी है। तो ऐसे ही बाबा कहते पीछे आने वाले जो भी हैं उनको भी सर्व शक्तियों का अनुभव करना है, स्टूडेंट लाइफ का भी अनुभव करना है और सेवादारी अर्थात उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना है। तो सब सब्जेक्ट में पास होना है। फिर यहाँ बाबा कहते हैं 1-2 में योगी नहीं बनना, 1-2 के एक देख से योगी बनना है, अर्थात हम किसी के पुरुषार्थ पर भी इतना डिपेंड ना हो जाएं, किसी के प्रभाव में इतना ना आ जाएं कि वो ही हमारी बुद्धि में बार बार घूमता रहे, उसी का हम गान करते रहें या मन ही मन हमारा आकर्षण रहे, ऐसा भी योगी नहीं बनना है। जो हमें योग में बैठे वही चित्र दिखाई दे उसका, बाबा कहते सहयोगी भले 1-2 के बनो लेकिन योगी नहीं बनना है, योगी एक बाप के बनना है और सबको बाप के साथ योग लगाने की विधि सिखानी है, सबको बाप के साथ जोड़ना है, सहयोग देना है। ये तो शक्तिशाली आत्मा बनना भी है और बनाना भी है, ये बाबा कहते विशेष दृढ़ संकल्प साथ रखो, कमजोरियाँ छोड़ दो, कमजोरी साथ नहीं रखना, कमजोरियाँ खत्म कर देनी है। फिर बाबा ने एक और सुंदर बात कही कि इतने वैरायटी होते हुए भी हैं लेकिन एक ब्राह्मण भाषा होगी, एक ब्राह्मण परिवार के होगे, एक परमात्मा के होगे, एक ही मत है, एक ही भाषा है, कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार मिल गया। बाबा कहते तो नशा रखो, बाबा कहते सेवा स्थान सारे संसार में बाबा कहते क्या है, ये सारे अपने घर हैं। बाबा कहते अगर कोई पूछे आपसे आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं तो क्या बताओ कि सारे संसार में अपने परिचित हैं, जहाँ भी जाओ अपना सेवा स्थान अपना घर है। अर्थात इसलिए कहा जाता है ना, ईस्ट इंडिया के लिए कहा, विदेशियों के लिए कहा जाता है कि उनका सूर्य कहीं डूबता नहीं है। जो ब्रिटिश काल में उन ब्रिटिश हुकूमत की थी, तो उसी तरह ब्रह्मा कुमारीज भी के लिए ये वाक्य प्रसिद्ध हो है ही, हो नहीं सकता बल्कि है ही, कि ब्रह्मा कुमारी इज वेरी रिचेस्ट इन वर्ल्ड, अर्थात ब्रह्मा कुमारी का भी हर देश में सेवा केंद्र है। तो ब्रह्मा कुमारी का सूर्य भी कहीं डूबता नहीं है, सदा उदय रहता है, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य ने ये सूर्य उदय हुआ है। तो बाबा कहते जहाँ जाओ अपना ही परिवार है, तो सेवादारी बनो अर्थात अधिकारी बनो, ऐसी रूहानी खुशी रखो सदा। और फिर एक जो व्यर्थ का बताया बाबा ने, हाँ इससे पहले और भी बाबा ने एक बात बताई कि सेवा के उमंग उत्साह में और स्वयं भी याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो, और खुशी खुशी स्वयं भी तीव्र गति से आगे बढ़ो और दूसरों को भी उमंग उत्साह से बढ़ाते चलो। बाबा कितने साकार में बच्चे भले यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन उनके चित्र पत्र यहाँ पहुँचे हैं, बाबा भी उनको रिस्पॉन्ड देते हैं, पद्मगुणा याद प्यार भी दे रहे हैं। कोई कोई बच्चों ने अपनी कमजोरियां लिखी हैं, तो बाबा ने कहा लिखा अर्थात बाप को दे दिया, और दे दी चीज़ तो वापस नहीं लेनी फिर। तो किसी भी बात को, संस्कार को, वायुमंडल की हलचल, दृश्य खस्त होना, ये सब खत्म। बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहो तो दिल शिकस्त से क्या होगा, शक्तिशाली बन जाएंगे। हिसाब किताब चुक तो बोझ उतरा, और खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। तो बाबा कहते हैं कितना बहुत सुंदर, माँ बाप के बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी हैं। तो हमेशा हम याद रखें कि स्वयं भगवान हमारा सहयोगी है, तो कितनी सुंदर उसकी अनुभूति हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ थे माँ बाप के, और एक बाबा ने आगे जो विशेष प्रेरणाएं दी हैं सेवार्थ, कि कैसे विदेशों में जो जहाँ जो बच्चे साकार में मधुबन नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनको कैसे सेवा करनी है, उनकी आशाएं कैसे पूर्ण करनी है। तो दादियों के साथ बाबा ने मुलाकात की, और बाबा ने कहा कि अनेक तरफ चक्कर लगाने की जो आशा है वो देख रहे हैं बच्चे, तो बाप दादा उस उन आशाओं को भी पूर्ण करने के लिए महारथी बच्चों को प्लान बनाने के लिए कह रहे हैं कि प्लान बनाओ और चारों ओर चक्कर लगाओ, आशा के दीपक जगाओ, सभी महारथी जो है आपस में मिल बैठ कर मीटिंग करो, एरिया बांटो, जहाँ से बच्चे नहीं आ सके वहाँ पहुँचो। देखो बाबा का बच्चों के प्रति कितना प्यार है, कि भले उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ हैं या कोई पारिवारिक परिस्थितियाँ हैं जो यहाँ नहीं आ पाते हैं, या कोई तन की प्रॉब्लम है, तो बाबा देखिए स्वयं उनके पास उनकी सेवा करने के लिए कैसे प्लानिंग बनाते हैं, कि कैसे मधुबन से दादियाँ उनके पास पहुँचें, महारथी भाई बहने उनके पास पहुँचें, उनको कुछ मधुबन का अनुभव कराएं, उनको परमात्म प्यार की अनुभूति कराएं। तो बाबा की कितनी बच्चों के ऊपर कृपा रहती है। बाबा कहते भले स्थान बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन यथाशक्ति जो प्रोग्राम वो करते हैं उनके लिए वही प्रोग्राम बहुत बड़े हैं। तो दोनों प्रकार के बाबा कहते प्रोग्राम करो, एक तो पब्लिक प्रोग्राम भी करो और दूसरा विशेष रूप से ब्राह्मणों की तपस्या के लिए प्रोग्राम बनाओ, रिफ्रेशमेंट। उस दिन भी था ना मुरली में एक रिफ्रेशमेंट के लिए, कि मधुबन में आते हैं किस लिए, बाप से सम्मुख मिलकर रिफ्रेश होने के लिए। तो बाबा यहाँ भी बच्चों को कह रहे हैं कि जहाँ से बच्चे नहीं आ पाए हैं वहाँ जाकर उनको रिफ्रेश करना है, उनके अनुसार ही उनका उनकी भावनाओं के अनुसार ही कार्यक्रम करना है, प्रोग्राम करना है। तो बाबा ऐसे बच्चों की अर्जियाँ लंबे समय से बाबा के पास हैं, तो कैसे बाबा उन अर्जियों की फाइल को भी पूरा कर रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं। तो ऐसे महारथी बच्चों को बाबा विशेष चांस दे रहे हैं सेवा चक्रवर्ती बनने का। फिर बाबा कहते सब जगह दादी तो जा नहीं सकती है, तो और बच्चों को भी तैयार करो, और दादी विदेश में हो और बाबा मधुबन में आए तो भी ठीक नहीं है, अगर विदेश में केवल दादी ही जाए तो क्या होगा, बाबा कहते 3 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे। और बाबा मधुबन में आया हो, दादी विदेश में हो तो अच्छा नहीं है। देखिए कितना सुंदर भगवान का प्यार है कि दादी के बिना भी भगवान उन्हें कितनी महान भी होती है कि एक जैसे मित्र होता है, मित्र मित्र के बिना तरसता है तड़पता है, तो उसी तरह दादी की जो समानता कैसे भगवान समान दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो हमारे लिए एक आदर्श मूर्त हैं, एग्जाम्पल हैं हमारे सामने दादियाँ, वरिष्ठ भाई बहनें। तो हम उनके जीवन को देखें कैसे भगवान उनकी महिमा करता है, मूल्यों में जिक्र करता है, दादियों के नाम लेते हैं, मनोहर दादी, गुलजार दादी, कुमारका दादी, भोली दादी, भूरी दादी, जगदीश बच्चा, प्रिजोन भाई, तो कैसे बाबा उनका जिक्र करते हैं, जो सब हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप हैं। तो बाबा कैसे कहते हैं, ऐसे तपस्या का प्रोग्राम भी बनाओ और फंक्शन भी करो, लेकिन फंक्शन में ज़्यादा भाग दौड़ नहीं, छोटा फंक्शन करो, भले VIP लाओ, रिफ्रेशमेंट हो जाओ, ब्राह्मणों की भी रिफ्रेशमेंट और VIP भी संपर्क में आ जाए। तो ऐसे उमंग उत्साह से उनको शक्ति मिले, निर्विघ्न बनने की उनको हिम्मत उत्साह मिले, तो ऐसे समय प्रमाण सरकमशांस प्रमाण वो बदल जाएंगे। तो ऐसी ये मुरली थी, कितनी सारी बातें बाबा ने मुरली में कही, हमने देखा बार बार इसको पढ़ेंगे तो मुरली के प्रति प्यार बिठाना सहज काम नहीं, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। हमारी खुद ही की कई कमजोरियां होती हैं जो हम कहते हैं कि मुरली पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। जब हमको समझ लीजिए मुरली पढ़ने का रस बैठ रहा है, समझ लीजिए बाबा का आशीर्वाद, बाबा की कृपा हमारे पर हो रही है। अगर मुरली पढ़ने का रस नहीं आ रहा है, हम खुद ही भगवान से दूर जा रहे हैं। उस दिन संडे की मुरली में सुना था ना, संडे की मुरली में था जो बाबा ने 3 प्रकार के स्नेही बच्चे देखे। तीसरे प्रकार के स्नेही बच्चों में बाबा ने कहा था कि बाप शक्ति देते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे अपनी कमजोरी के कारण अर्थात अपनी दूसरी बातों में व्यस्त होने के कारण उसको कैच नहीं कर पाते हैं। और शक्ति कैसे देते हैं, जो भी निमित आत्माएं होती हैं, निमित आत्माओं के माध्यम से कोई ना कोई इशारा मिलता है, और कोई कोई बच्चे तो उन इशारों को कैच करके आगे बढ़ भी जाते हैं, तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में भी आ जाते हैं। लेकिन कोई कोई बच्चे अपने अलबेलेपन की नींद, अपने अल्पकाल के साधनों में मस्त हो जाते हैं, इसलिए उनको कैच नहीं कर पाते, अपने संस्कारों के ही उलझन में उलझे रहते हैं। तो बाबा ने 3 प्रकार के जो स्नेही बच्चे देखे थे, पहले थे जो सदा स्नेही हैं, और सदा स्नेही बच्चों की निशानियाँ बताई थी कि प्रकृति और माया भी उनकी दासी बन जाती है और ही उनको सहयोग देती है, उनका समय और संकल्प बाप की तरफ ही लगे। दूसरे बच्चे देखे थे स्नेही बच्चे, स्नेही बच्चे कभी कभी थोड़ा थोड़ा उनके मन के संकल्प और तप चले जाते हैं, लेकिन फिर भी स्मृति में रह के तुरंत वापस निकल आते हैं, 80% स्नेही हैं। पहले जो सदा स्नेही हैं वो सदा न्यारे प्यारे हैं, अति न्यारे प्यारे हैं, और जो दूसरे स्नेही हैं, दूसरे प्रकार के स्नेही, वो 80% फिर भी सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और तीसरे प्रकार के जो बच्चे देखे थे बाबा ने, वो हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। तो बाबा तो अनेक प्रकार के इशारे देते हैं हमें, चाहे वो किसी आत्मा के माध्यम से दें, चाहे हमें स्वयं टचिंग कराएं, लेकिन वो टचिंग की अनुभूति करने के लिए अपने मन को शुद्ध शांत पवित्र बनाना होगा, एकदम एकाग्र हो जाए मन हमारा प्रभु प्रेम के ऊपर। दूसरी दूसरी बातों से हम अपने मन को हटा लें, जो भी व्यर्थ का किचड़ा है उसको हम समाप्त कर दें। और व्यर्थ का बहुत सारा किचड़ा है, चाहे कहीं ना कहीं मान शान का इच्छा है, मान शान के लिए हम कई प्रकार के, हमारा नाम प्रसिद्ध हो जाए या हमारा नाम हो जाए, इसके लिए भी कई प्रकार के व्यर्थ के आजकल देखे जा रहे हैं संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो हम चीज़ों से थोड़ा किनारा करके अपनी त्याग तपस्या को बढ़ाएं, हमारा वैराग्य बढ़ता जाए, और वैराग्य बढ़ेगा जितना हम ईश्वरीय महावाक्यों को अपने जीवन में आत्मसात करते जाएंगे, उनका पढ़ाई लिखाई करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, अपने को बिजी रखेंगे। व्यर्थ तो जीवन में हम स्वयं आने देते हैं, अगर हम अपने जीवन को बिजी रखें तो व्यर्थ आ ही नहीं सकता है। अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें, घर में छोटे मोटे काम हैं एक दो का हाथ बटाएं, चाहे लौकिक में हम रहते हैं, कर्म क्षेत्र रहते हैं, तो वहाँ भी हम एक दो का हाथ बटाकर उनकी दुआएं अर्जित कर सकते हैं, और वो जो दुआएं हैं वो हमारे अनेक प्रकार के जो जीवन में विघ्न हैं सूक्ष्म रूप से, वो हमारे विघ्नों को समाप्त कर देगी और हमारे पुरुषार्थ का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाएगा। तो दूसरों से दुआएं लेना भी सीखना है, वो दुआएं हमारे लिए दवाई का काम करेगी, हमें बहुत तंदुरुस्त रखेगी मन से भी और तन से भी। तो घर में साफ़ सफाई करें, दूसरों का हाथ बटाएं, जितना भी हमारे से दूसरों को सहयोग हो तो वो सहयोगी बने, तन मन धन से भी विधि पूर्वक मर्यादा पूर्वक मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर। उत्तिन भी बाबा ने कहा माया से बचने का सहज साधन क्या है, तो वो बाबा ने एक कहा कि मर्यादाओं के अंदर में रहना और बीज रूप बाप को सदा साथ रखना। तो हर समय बाबा की छत्रछाया में रहें, बाबा को साथ रखें, बाबा से रूहान करें, बाबा से वरदान लेते रहें, बाबा से दृष्टि लेते रहें, बाबा के महावाक्य को पढ़ते रहें, बाबा को अपना हालचाल सुनाते रहें, अपना पोता मिल सुनाते रहें। कितने सारे साधना हमें बाबा ने इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए दिए हैं, निरंतर हम अतिंद्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो ये मुरली थी, इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें बाबा ने पहले तो बच्चों की विशेषताएं देखी, दो विशेषताएं, एक तो स्नेह, स्नेह के बंधन में बंध गए तो जो परिवर्तन शक्ति है उस परिवर्तन शक्ति के आधार पर जो भी पुरानी रीति रस्म मान्यताएं हैं उनको भी बदल दिया, और दूसरों को भी अपने हमजिन्स को भी बदलने में वो एग्जाम्पल बन गए विदेशी बच्चे। फिर बाबा ने अव्यक्त मिलन की बात कही कि अभी भले ये हद का सीजन समाप्त हो रहा है लेकिन बेहद का सीजन तो सदा चालू है, और वो है अव्यक्त वतन में अव्यक्त बाप दादा के साथ अव्यक्त मिलन की अनुभूति करना। और वो जो अव्यक्त शक्ति मिलेगी उस अव्यक्त शक्ति से हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, अपने जीवन में विशेष आगे बढ़ने का अनुभव करेंगे, उड़ते रहेंगे। तो बाबा कहते वो सीजन तो सदा चालू है, यहाँ साकार में फिर भी साधनों की जरूरत पड़ती है, और वहाँ वतन में तो एक सेकंड में सारे जितने भी हों कितने भी लाखों हों, चाहे केवल भारत नहीं पूरे विदेशी बच्चों को भी सब कोई मर्ज कर सकते हैं, बड़ा संगठन भी छोटा संगठन लगता है। तो ये भी वाली बात ही। फिर बाबा ने बच्चों के खेल देखे, रिजल्ट देखी कि बच्चों ने दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है, भले कोई बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं लेकिन अभी इस वर्ष वो आगे बढ़ गया, अर्थात तो उन्होंने अपने जीवन पर अटेंशन रखा तो वो आगे बढ़े हैं, अनुभवी बन गए हैं, गंभीर हो गए हैं, पढ़ाई से प्यार, बाप से प्यार। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चले, भले साधनों का यूज़ कर रहे हैं, साधनों को उपयोग में ला रहे हैं लेकिन फिर भी तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में है। तो ऐसे बाबा ने बच्चों का रिजल्ट देखा, क्योंकि बच्चों ने प्रवृत्ति में रहते भी शक्तिशाली संकल्पों से स्वयं को परिवर्तन किया, दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन कर लिया, तो ये भी देखा। फिर बाबा ने अव्यक्त ब्रह्मा, हाँ, दो प्रकार की सृष्टि देखी, एक तो मुख वंशावली और दूसरा संकल्पों की रचना। तो बाबा ने कहा संकल्पों की रचना बहुत शक्तिशाली होती है, तो वो भी प्रत्यक्ष प्रभु बाबा ने देखा। और दूसरा बाबा ने कहा समय बहुत कम है, बचपन के खेल नहीं दिखाओ, अभी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक, अर्थात संख्या बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो केवल स्वयं को शक्तिशाली नहीं बनाना बल्कि औरों को भी शक्तिशाली बनाना है, ये भी है। फिर बाबा ने व्यर्थ को ख़त्म करने की विधि बताई कि पढ़ाई में सेवा में बिजी रहो। फिर एक ब्राह्मण परिवार, एक भाषा, एक मत, सारा विश्व भी अपना है, जहाँ जाओ ब्रह्मा कुमारी की सेवा करते हैं, अपना घर है, ये वाली बातें और सेवा के लिए प्रेरणाएं दी। तो सारी मुरली थी, इसको हम बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसका अनुभव करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, ताकि हमारे विचार और बाबा के विचार मिलते जाएं और हम बाप मन बनते जाएं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।